नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने
प्रिय मित्र, आपको मसीह यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। पिछले अध्ययन में हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27 अध्याय में याकूब और उसकी माता द्वारा एसाव को व उसके पिता को धोखा देने की योजना के बारे में देख रहे थे, और आज हम उसके आगे देखेंगे कि उनकी योजना सफल हुई और याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया। तो आइए हम उत्पत्ति 27 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, तब याकूब ने अपने पिता के पास आकर कहा, हे मेरे पिता। इसहाक ने कहा, मैं यहाँ हूँ। हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब की आवाज़ एसाव की आवाज़ की तरह बिल्कुल नहीं थी। आगे हम उत्पत्ति 27 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, तब याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा ज्येष्ठ पुत्र एसाव हूँ। जैसे तूने कहा था वैसा ही मैंने किया है। अब उठ और बैठकर शिकार का मांस खा कि तू मुझे आशीर्वाद दे सके। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि तुझे इतनी जल्दी शिकार मिल गया? उसने कहा, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरे लिए ऐसा होने दिया। प्रिय मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए कि यहाँ पर याकूब बड़े ही अच्छे तरीके से धोखा दे रहा है। जैसे कि आप भी बहुत से धोखेबाजों को अपने चारों ओर पाते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहे हैं, और कभी कभी परमेश्वर असाधारण चीजों को भी करने के लिए अगुवाई करते हैं। मैं कभी कभी इस बात को देखता हूं कि हमारे मसीही भाई बहन सोचते हैं कि वे काम कर सकते हैं जिससे कि माफिया के या गलत लोग गिरफ्तार किए जाएं। परंतु ये लोग बड़ी धार्मिकता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यही परमेश्वर की इच्छा है। मित्रों, विश्वास कीजिए, यहां पर याकूब भी एक धार्मिक धोखेबाज है। इस धोखे के साथ परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27 अध्याय और 21 पद से लेकर के 27 पद तक। यहाँ लिखा हुआ है, तब इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ कि मैं तुझे टटोल कर जान लूं कि सचमुच तू मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। अतएव याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसे छू कर कहा, आवाज तो याकूब की है परंतु हाथ तो एसाव के हैं। और उसने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथों पर वैसे ही बाल थे जैसे उसके भाई एसाव के हाथों पर। अतः उसने उसको आशीष दी और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? और उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तब उसने कहा, भोजन मेरे पास ले आ, मैं अपने पुत्र के द्वारा किए हुए शिकार का मांस खाऊंगा कि तुझे आशीर्वाद दूं। तब वह भोजन उसके पास ले आया और उसने खाया। वह उसके पास दाखरस भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। अतः उसने निकट आकर उसे चूमा। तब उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसे यह आशीर्वाद देते हुए कहा, देखो मेरे पुत्र की सुगंध उस खेत की सुगंध के समान है जिसे यहोवा ने आशीष दी हो। मित्रों, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसहाक को संदेह हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है, पर रिबका इसहाक को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने बहुत ही बारीकी से सब तैयारी की थी कि वे पकड़े ना जाएं। आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27 अध्याय और उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि के उत्तम से उत्तम उपज और बहुतायत से अन्न व नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और जाति जाति के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे शापित हों और जो तुझे आशीष दे वे आशीष पाएं। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आशीष इसहाक को मिली थी उसी आशीष को वह आगे बढ़ा रहे हैं। और मजेदार बात तो यह है कि यह आशीष पहले से ही याकूब की थी, परमेश्वर ने कहा था और इसे किया भी। परमेश्वर पहले से ही याकूब को आशीष दे चुके थे, इसलिए परमेश्वर इस धोखे को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब एसाव जंगल से लौटा तब सारी योजना खुल गई। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 27 अध्याय उसके 30 से 33 पद तक। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक की उपस्थिति से निकला ही था, वैसे ही उसका भाई एसाव शिकार करके लौटा। तब उसने भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर और अपने पिता के पास लाकर उससे कहा, हे मेरे पिता, उठ और अपने पुत्र द्वारा किए गए शिकार का मांस खा कि तू मुझे हृदय से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पुत्र, तेरा ज्येष्ठ पुत्र एसाव हूँ। इसहाक ने अत्यंत थरथराते हुए कहा, तब वह कौन था जो शिकार का मांस मेरे पास लाया जिससे कि तेरे आने से पहले मैंने वह सब कुछ खाकर उसे आशीर्वाद दिया? अब तो वह निश्चय ही आशीषित होगा। मित्रों, हो सकता है कि कुछ लोग यह पूछे कि हिरण का मांस बकरे के जैसे लगता है या भेड़ के जैसे। यह बिल्कुल इसी के जैसे है, क्योंकि एक बार एक गांव में कुछ लोग शिकार करने गए और उन्होंने हिरण का शिकार किया और एक पार्टी की। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए मांस कम हुआ तो उन्होंने भेड़ के मांस को पकाया और किसी को भी पता ना चला, अर्थात दोनों का मांस एक जैसे ही स्वाद देता है। अब इसहाक इस बात को देखते हैं कि वह कैसे इस धोखे के द्वारा ठग लिया गया। तो आइए हम उत्पत्ति 27 अध्याय उसके 34 पद से लेकर के 40 पद तक को पढ़ें। जब एसाव ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहने लगा, हे मेरे पिता, मुझे, हाँ मुझे भी आशीर्वाद दे। और उसने कहा, तेरा भाई छल पूर्वक आकर तेरा आशीर्वाद लेकर चला गया। एसाव ने कहा, उसका नाम याकूब ठीक ही रखा गया, उसने दो बार मुझसे छल किया है, उसने मेरे पहलौठा का अधिकार तो ले ही लिया और अब मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया है। तब उसने पूछा, क्या तूने मेरे लिए कुछ भी आशीर्वाद नहीं रख छोड़ा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर दिया, मैंने उसे तेरा स्वामी ठहराया है, उसके भाई बंधुओं को उसके अधीन कर दिया और अन्न व नया दाख मधु देकर उसे पुष्ट किया है। अतः अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। तब एसाव जोर जोर से रोने लगा। तब उसके पिता इसहाक ने उत्तर दिया, देख, तेरा निवास उपजाऊ भूमि और आकाश की ओस से दूर होगा, तू अपनी तलवार के बल पर जीवित रहेगा और तू अपने भाई के अधीन रहेगा, पर जब तू व्याकुल होगा तो उसके जुए को अपनी गर्दन से तोड़ डालेगा। मित्रों, इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि रिबका याकूब को उसके मामा लाबान के घर भेजती है। उत्पत्ति 27 अध्याय उसके 41 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए एसाव ने याकूब से उस आशीर्वाद के कारण जो उसके पिता ने उसे दिया था बैर रखा। एसाव ने अपने मन में कहा, मेरे पिता की मृत्यु के दिन निकट हैं, उसके बाद मैं अपने भाई याकूब का घात करूंगा। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि एसाव यह सोच रहा है कि मेरे पिता अर्थात उसके पिता बूढ़ा हो गए हैं और अब वह अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु होती है मैं याकूब को मार डालूंगा और मैं उससे छुटकारा पाऊंगा। यही उसके हृदय का विचार था और निश्चित रूप में उसने दूसरों से भी इसके बारे में बातचीत की। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27 अध्याय उसके 42 और 43 पद में आगे पढ़ते हैं। जब रिबका को उसके ज्येष्ठ पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई तो उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, तेरा भाई एसाव तुझे मारकर ही दम लेने का विचार कर अपने आप को सांत्वना दे रहा है। अतः हे मेरे पुत्र, अब जो मैं कहते हूं उसे कर, तुरंत मेरे भाई लाबान के पास हारान को भाग जा। मित्रों, यहां पर पुनः हम देखते हैं कि रिबका इस स्थिति को अपने हाथ में लेती है। वह याकूब से कहती है कि तुम इस घर को छोड़ने जा रहे हो। वह जानती थी कि इस पाप का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। उसने फिर कभी भी याकूब को दोबारा नहीं देखा। उसने कहा था कि वह उसे थोड़े समय के लिए वहां भेजेगी, परंतु यह बहुत लंबा समय रहा और वह उसके लौटने से पहले ही मर गई। मित्रों, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि याकूब अपनी माँ का दुलारा था। वह चाहती थी कि याकूब उसके मामा लाबान के घर जाए और यही कारण हुआ कि उसने उसे भेजा। यही वह स्थान है जहां याकूब अपनी सीख सीखने जा रहा है। यही वह स्थान है जहां समस्या उसके घर में आकर उसे उलझन में डालेगी। उसके बूढ़े मामा उसे स्कूल में दाखिल करने जा रहे हैं और कुछ चीजों को उसे सिखाने जा रहे हैं। याकूब ने सोचा कि वह बहुत चतुर है, लेकिन उसके मामा लाबान उससे भी अधिक अनुभवी चतुर हैं। कमजोर याकूब अपने आप को अव्यवसायी के रूप में देखता है और वह परमेश्वर के सामने निर्भीकता से पुकारने जा रहा है, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। मित्रों, अब हम उत्पत्ति 27 अध्याय के 44 और 45 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब तक तेरे भाई का प्रकोप शांत ना हो जाए तब तक कुछ समय के लिए तू वहीं रहना, अर्थात जब तक तेरे विरुद्ध तेरे भाई का क्रोध शांत ना हो जाए और जो कुछ तूने उसके साथ किया है उसे वह भूल ना जाए, और तब मैं तुझे वहां से बुलवा लूंगी। मैं एक ही दिन में क्यों तुम दोनों से हाथ धो बैठूं। यहां पर ध्यान दीजिए, वह कहती है कि वह उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए दूर भेज रही है। यही कुछ दिन 20 साल हो गए और इसी बीच में वह मर भी गई। वह पुनः अपने लाडले बेटे को कभी न देख सकी जो उसका प्रिय था। मित्रों, हम रिबका के जीवन का दृश्य देख सकते हैं जब याकूब चला गया और उन दिनों में एसाव अपनी माता का ठीक से ध्यान नहीं रखता था। यह सब कुछ उस धोखा के कारण ही हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27 अध्याय के 46 पद में लिखा हुआ है, और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हित्ती लड़कियों के साथ रहते रहते उकता गई हूँ। यदि याकूब भी उस देश की लड़कियों में से किसी हित्ती लड़की से विवाह कर लेता है तब मेरे जीवन में मुझे कौन सा सुख मिलेगा। मित्रों, इस बात को याद रखें कि एसाव ने हित्ती स्त्री से विवाह किया जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। इस रीति से परिवार पहले से ही दुखी है और यहाँ तक कि रिबका भी पराजित हो चुकी थी। अब वह इसहाक से कहती है कि यदि याकूब भी यहाँ ठहरता है तो संभवतः बड़े भाई की तरह वह भी हित्ती स्त्री को ब्याह लेगा। वास्तव में यही एक सुंदर बहाना भी था कि वह याकूब को एसाव से बचाए। इसके लिए उसने इसहाक के साथ बातचीत की और उसे मनाने के लिए तैयार कर लिया कि वह इसी कारण से याकूब को अपने भाई लाबान के घर भेज रही है। मित्रों, याद करें कि इब्राहिम ने अपने दास को किस रीति से रिबका के घर व देश भेजा ताकि रिबका इब्राहिम की बहू बने। और अब यहाँ पर भी मुख्य विषय यही दिखाया जा रहा है कि याकूब के लिए पत्नी की आवश्यकता है और उसे बड़े भाई के खतरे से भी बचाना है। यहाँ पर मैं स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूँ कि यदि याकूब अपने पिता के घर में रहता तो निश्चय ही एसाव उसे मार डालने की कोशिश करता। जो भी हो, हुआ कुछ और। सबसे पहले रिबका मर गई और याकूब अपने पिता को दफनाने के समय में वापस आया, परंतु वह अपनी माता को फिर कभी भी नहीं देख पाया क्योंकि वह मर चुकी थी। मित्रों, यहाँ पर 27 अध्याय समाप्त हुआ और अब हम 28 अध्याय में अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि याकूब ने एक बहुत ही तिरस्करणीय या अशोभनीय काम किया है जिसे शायद ही कोई व्यक्ति करे। उसने ऐसा अपनी माता के आदेश पर किया था। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार लोग बहाना बनाते और कहते हैं कि उनकी माता ने उन्हें प्यार नहीं दिया जब वे छोटे बच्चे थे। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि याकूब ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि याकूब से प्यार किया गया था और प्यार के कारण ही वह बर्बाद भी हो गया था। जब उससे वह कार्य करने के लिए कहा, परमेश्वर के वचन के आधार पर देखा जाए तो पहलौठेपन का अधिकार पहले से ही उसका था। उसके पिता के आशीर्वाद देने की प्रक्रिया या नियम पूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। इब्राहिम ने इसहाक को आशीष दी थी, परमेश्वर ने दी थी और परमेश्वर ही था जिसने याकूब को यह आशीर्वाद दिया। उसकी धोखेबाजी सिर्फ अनावश्यक नहीं थी, परंतु इसके कारण से परमेश्वर याकूब के साथ बात करेंगे यह निश्चित था। मित्रों, रिबका ने जो योजना बनाई थी वह कपटपूर्ण और तर्कपूर्ण थी और संभवतः ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना सही भी था। उसने इसहाक को नहीं बताया कि वह याकूब को अपने भाई लाबान के पास इसलिए भेज रही है ताकि वह अपने बड़े भाई एसाव के क्रोध से बच जाए, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि वह वहां पर अपने लिए पत्नी पसंद करे जो उसके परिवार वालों में से हो। हम इस अध्याय में देखेंगे कि याकूब अपना घर छोड़ता है, वह बेतेल को आता है जहां पर परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और इब्राहिम के साथ किए गए वाचा को उसे निश्चित करते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 28 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की के साथ विवाह ना करना। मित्रों, पूरे पुराने नियम की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला भक्त किसी विश्वास न करने वाले अभक्त से विवाह करे। इस पर विश्वास करने का कारण हम फिर से उत्पत्ति 6 अध्याय में देखते हैं, जहां पर लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और यह कहता है कि धार्मिक वंश के लोगों ने अधार्मिक वंश के लोगों से विवाह किया जो कैन का वंश था। इसका न्याय भी हम जल्दी ही देखते हैं जो जल प्रलय के द्वारा हुआ। एक धार्मिक व्यक्ति को छोड़ सब नाश किए गए। मित्रों, अंतर जाति या अंतर धर्मी विवाह हमेशा ही अधार्मिकता को बढ़ावा देता है। मैं यह आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि हम इन दिनों में रह रहे हैं जहां जवान लोग किसी पुराने समय के प्रचारक की सलाह को स्वीकार करने के आदि नहीं है। वे आश्चर्य करते हैं कि यह इसके बारे में क्या जानता है। यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो मैं पूरे सत्य को जानता जो इस संबंध में है। मैंने बहुत सारे परिवारों व जवानों को सलाह दिया है और वे संभल गए। आज वे अच्छा जीवन जी रहे हैं। यह कहानी भी लगभग मिलती जुलती सी है। एक जवान या युवती कहेगी, मैंने एक सही व्यक्ति को पा लिया है जिससे वह शादी करना चाहती है, लेकिन वह व्यक्ति मसीही या विश्वासी नहीं है। जो भी हो, जैसा भी हो, वे उसके साथ विवाह करना चाहती है और प्रभु के लिए जीतना चाहती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जवान भाई और बहन, यदि आप विवाह से पहले उसे प्रभु के लिए नहीं जीत सके तो विवाह के बाद आप कभी भी उसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ विवाह करने से मना करते हैं। यह हमेशा दुख लाता है। मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी हैं और आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है और न ही होगा, क्योंकि आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इन सब बातों को हमें बता दिया है जो कभी न मिटने वाली है, कि एक विश्वासी किसी अविश्वासी से विवाह न करे। हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल या ज्योति की अंधकार से क्या संगति। मित्रों, नया नियम बड़ी कठोरता के साथ मसीहों से कहता है कि वे असमान जुए के साथ न जूते जाएं, अर्थात अविश्वासी के साथ। जैसा कि कुछ निंदा करने वालों ने मुझ पर दोष लगाया, आप अंतरजातीय विवाह के द्वारा ऐसा करते हैं और यही एक मार्ग है जिसके द्वारा आप उनके साथ जुड़ जाते हैं और परमेश्वर इसे कठोरता से मना करते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 28 अध्याय के 2-4 पदों को पढ़ें। लिखा है, उठ और पदन आराम में अपने नाना बतुएल के घर जाकर अपने मामा लाबान की पुत्रियों में से किसी एक को अपनी पत्नी चुन ले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे इतना फलवंत करे और बढ़ाए कि तू अनेक जातियों का समूह बन जाए। वह तुझे इब्राहिम की सी आशीष प्रदान करे, हाँ, तुझे और तेरे साथ तेरे वंशजों को भी, कि तू अपने प्रवास के उस देश का अधिकारी बन जाए जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था। मित्रों, यह स्पष्ट है कि इसहाक समझता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी जिसे परमेश्वर ने इसहाक को दिया और जिसे उसके पुत्र याकूब को देना है। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, तब इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पदन अराम में लाबान के पास चला गया जो अरामी बतुएल का पुत्र था और याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। मित्रों, यदि आपको परिवार की राष्ट्रीयता देनी होती तो आपको कहना होगा कि ये लोग सीरियन थे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में उन्हें यही कहा गया है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इब्राहिम यहूदी था, क्या वह एक इसराइली था? जी नहीं, वास्तव में वह नहीं था। उस समय तक कोई भी इसराइली नहीं था, जब तक कि याकूब का नाम बदलकर इसराइल नहीं रखा गया। उसके 12 पुत्र इसराइली थे। यह वंशावली इब्राहिम से निकलकर आई। वह एक जाति का पिता था, परंतु आप इब्राहिम को मिद्यानी कहकर नहीं पुकारेंगे, फिर भी वह आज भी मिद्यानियों का पिता है। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि एसाव इश्माएल की पुत्री से विवाह करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसके 6 से लेकर के 9 पद में हम पढ़ते हैं, फिर एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पदन अराम को भेजा है कि वह वहां जाकर अपने लिए पत्नी चुने, और उसे आशीर्वाद देते समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न करना, और यह कि याकूब अपने माता पिता की आज्ञा मानकर पदन अराम को चला गया है। अतः एसाव ने देखा कि कनानी लड़कियां मेरे पिता को बुरी लगती है, तो वह इब्राहिम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की पुत्री महलत को, जो नबायोत की बहन थी, अपनी अन्य पत्नियों के होते हुए भी ब्याह लिया। मित्रों, अब कुछ लोग गलत न समझे, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इश्माएल वंश के विषय में हम अब नहीं देखेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल इश्माएल के वंशज का अनुसरण नहीं करती है, फिर भी उसके वंश के नाम को लिया गया है, क्योंकि यह मसीह की ओर से चलने वाले वंश के बारे में बीच बीच में हमें बताती है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एसाव बाहर जाता है और इश्माएल की पुत्री से विवाह करता है। वह यह सोचता है कि उसके ऐसा करने से उसके पिता खुश होंगे। मित्रों, आप यहाँ पर देखें कि उसमें आत्मिक ज्ञानबोध की कितनी कमी है, क्योंकि इश्माएली लोग उतने ही तिरस्कृत थे जितना कि यूनानी या फिलिस्ती। अब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब को बेतेल में दर्शन देते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय उसके 10 पद में, तब याकूब बेर्शेबा से हरान की ओर चला, वह उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। आगे उत्पत्ति 28 अध्याय के 11 पद में लिखा है, उसने किसी एक स्थान पर पहुंचकर वहां रात बिताई, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। अतः उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और उसी स्थान पर सो गया। मित्रों, जिस स्थान पर याकूब आया है उसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, वह बेतेल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। बेतेल यरूशलेम से 12 मील उत्तर में है, और घर जिसे याकूब ने छोड़ा संभवतः यरूशलेम से 25 या 30 मील दक्षिण में था। इसका मतलब यह हुआ कि याकूब अपने पहले दिन की यात्रा में 40 मील तय कर चुका था। मित्रों, आप यहां पर देख सकते हैं कि याकूब अपने भाई एसाव से दूर चले जाने की बहुत जल्दी में था। वह चाहता था कि वह जितना अधिक दूर जा सके चला जाए, परंतु जितना अधिक दूर वह एसाव से होता है उतना ही अधिक दूर वह अपने घर से भी होता जाता है। मित्रों, आप क्या सोचते हैं कि वह उस रात कैसे महसूस कर रहा था? मैं आपको बताता हूं कि वह बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, जिसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। संभवतः उसे घर की याद आ रही होगी। जहां तक हुई बातें हैं उनसे पता चलता है कि उसकी पहली रात थी जो उसने अपने घर से दूर रहकर बिताई। प्रिय मित्रों, क्या आपको अपने वो पहली रात याद है जिसे आपने पहली बार घर से बाहर बिताई? मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपने घर से बाहर एक रिश्तेदार के घर जाकर बिताई, तो मुझे रह रहकर घर की याद आ रही थी, क्योंकि मैं वहां हॉस्टल में जगह न मिलने के कारण कुछ दिन रुका था, लेकिन बाद में बहुत सी रातें मैंने घर से बाहर बिताई। लेकिन जो घर की याद मुझे उस पहली रात को आई थी और मैं दुखी हुआ, उतना बाद में कभी नहीं हुआ। मैं अक्सर याकूब के बारे आश्चर्य करता हूँ कि वह अब एक पुरुष हो चुका है, एक बढ़ा हुआ लड़का है, फिर भी वह घर से बाहर जाने के बाद याद से ग्रसित है। यह पहली बार है जब वह अपनी माता रिबका से अलग है, और वह अब तक हमेशा माता की आंचल से बंधा रहता था, लेकिन अब वह स्वतंत्र है और वह घर के बाहर अपने मार्ग में है, और यह उसकी पहली रात है जिसे वह घर से बाहर बिता रहा है। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि आगे क्या होता है। वह सोने के लिए लेटता है और एक पत्थर तकिया के लिए अपने सिर के नीचे रखता है। बेतेल एक सुनसान जगह है। इस जगह का वर्णन उजाड़ बंजर भूमि के रूप में किया गया है, जो एक बड़े क्षेत्र में है। इसमें अधिकतर चट्टान ही पाए जाते हैं। यह समुद्र की सतह से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। संसार में ऐसे बहुत से निर्जन स्थान और मरुभूमि हैं जो इससे मेल खाते हैं, अर्थात इसके सदृश हैं। मित्रों, बहुत से पर्यटक वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह स्थान बहुत विशेष होता है और वे दूसरी तरफ घूमने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग इसे दूर से ही देख पाते हैं तो यह उजाड़ और घृणित सा दिखाई पड़ता है। फिर भी यह स्थान याकूब के आत्मिक जीवन में उच्च स्थान रखता है, न केवल इस समय परंतु बाद के जीवन में भी। तो यही वह स्थान है जहां याकूब आया और सोने के लिए लेटा। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, और देखो परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ और उतर रहे हैं। मित्रों, इसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को दिए गए वाचा को स्पष्ट और निश्चित करते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 28 अध्याय के 13 पद को पढ़ें। लिखा है, और देखो यहोवा उसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मित्रों, इस सिलसिले में यह क्षेत्र बिल्कुल ठीक था जहां परमेश्वर ने इब्राहिम को पहली बार दर्शन दिया। यह फलिस्तीन देश में आने के बाद हुआ था। उत्पत्ति 28 अध्याय उसके 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तेरा वंश धूलिकण के सदृश असंख्य होगा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैल जाएगा, तथा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के समस्त कुटुंब आशीष पाएंगे। मित्रों, अब यहाँ पर परमेश्वर याकूब को वो सब चीजें दे रहे हैं उसने पहले इब्राहिम को दी थी। उसने इसे इसहाक को भी दोहराया था और अब इसे स्पष्ट करते हैं और इसे पुनः सुनिश्चित करते हैं कि वह इसे करेंगे। मित्रों, अब हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है, इसलिए हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम अगले अध्ययन में अवश्य मिलेंगे और इसके आगे के विचारों पर मनन करेंगे। तब तक आप सब प्रभु की निकटता में बने रहिए, प्रभु से प्रेम कीजिए और अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित कीजिए। अपने विचार व प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य लिखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।